पृष्ठ संख्या 49, अध्याय 4, 1889 का मेजी संविधान का शेष भाग। संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजी संविधान या जापानी साम्राज्य के संविधान का प्रख्यान 11 फरवरी 1889 को सम्राट से प्रजा को तोहफे के रूप में किया गया, गिफ्ट फ्रॉम द एम्पेरर टू द पीपल। इसमें 76 अनुच्छेद थे जो निम्नलिखित 7 खंडों में बांटे गए थे। खंड पहला, अनुच्छेद 1 से 17, सम्राट द एम्पेरर। खंड दो, अनुच्छेद 18 से 32, जनता के अधिकार एवं कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सब्जेक्ट्स। खंड तीन, अनुच्छेद 33 से 54, संसद द इम्पेरियल डाइट। खंड चार, अनुच्छेद 55 से 56, राज्य मंत्री एवं सलाहकार परिषद, द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रिवी काउंसिल। खंड पाँच, अनुच्छेद 57 से 61, कानून, द जुडिकेचर। खंड छः, अनुच्छेद 62 से 72, वित्त, फाइनेंस। खंड सात, अनुच्छेद 73 से 76, अनुपूरक नियम, सप्लीमेंट्री रूल्स। संविधान के अनुसार एक द्विसदनी संसद का गठन हुआ जिसे अंग्रेजी में डायट की संज्ञा दी गई, उच्च सदन में जिसे अभिजात सदन हाउस ऑफ पीयर्स भी कहा जाता है, उसमें मुख्यतः उच्च भद्र वर्ग, निम्न पद के निर्वाचित सदस्य तथा कुछ सम्राट द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते थे जो सामान्यतः शिक्षाविद थे। निम्न सदन लोअर हाउसेस के सदस्यों का निर्वाचन अत्यंत सीमित उन मतदाताओं द्वारा किया जाता था जो सिर्फ बालिक पुरुष थे और जो 15 एन या अधिक कर देते थे। 1890 में इनकी कुल संख्या केवल 450,000 या कुल बालिक पुरुषों का 5% थी। विधायी शक्तियों का प्रयोग सम्राट के अधिकार में था जिनके लिए वह संसद की सहमति ले लेता था, परंतु बजट तथा अस्थाई कानूनों के संदर्भ में दोनों सदनों की पूर्ण सहमति आवश्यक थी। तथापि कानून के संशोधन की प्रक्रिया केवल सम्राट ही आरंभ कर सकता था। इसके अतिरिक्त सम्राट को संसद के सत्र में होने की दशा में अध्यादेश जारी करने के कानूनी अधिकार प्राप्त थे। सम्राट किसी भी समय संसद का सत्रावसान कर सकता था या निम्न सदनों को भंग कर सकता था ताकि चुनाव फिर से हो सके। कार्यपालिका के क्षेत्र में भी सम्राट को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य सम्राट के प्रति उत्तरदायी था और न कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट प्रमुख राजनेताओं और गवर्नरों वर्ग की सलाह से करता था, क्योंकि इस वर्ग का मेजी पुनः स्थापन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था। प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख था जिसमें विभिन्न विभागाध्यक्ष थे। ये मंत्रीगण सम्राट को सलाह देते थे और साथ साथ अपने विभागों का प्रशासन भी देखते थे। प्रधानमंत्री को सम्राट की आज्ञा से मंत्रिपरिषद के चयन का अधिकार था। इन सबके अतिरिक्त सम्राट सेना एवं नौसेना का सर्वोच्च नायक था। सेना एवं नौसेना के प्रमुख सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे, न कि संसद या मंत्रिपरिषद के प्रति। न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल की प्रशासनिक देखरेख में था। संविधान में कई जनाधिकारों का उल्लेख किया गया था, जैसे धार्मिक, प्रकाशन, अभिव्यक्ति, जनसभा आयोजित करने इत्यादि की स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार आदि। परंतु इन अधिकारों को कानून में ही उल्लिखित अपवाद अथवा वैसी सीमाएं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता पर बल दे आदि को पाबंदियों से सीमित कर दिया गया था। वास्तव में विधान पालिका और कार्यपालिका की तरह न्यायपालिका भी राजगद्दी के अधीन थी, परंतु इसका कार्यान्वयन न्यायालयों द्वारा सम्राट के नाम पर होता था। न्यायालयों की स्थापना कानून के तहत होती थी, न कि राजकीय अध्यादेशों के द्वारा, जैसा कि प्रशासनिक व्यवस्था में किया जाता था। न्यायालयों को चार वर्गों में बांटा जा सकता था। पहला, एक सर्वोच्च न्यायालय टोक्यो, दूसरा, सात अपील के न्यायालय टोक्यो, ओशाका, नागोया, हिरोशिमा, नागासाकी, मियागी, सप्पोरो, तीसरा, एक प्रशासन पद संबंधी न्यायालय में, तीसरा, एक प्रशासन पद संबंधी न्यायालय प्रत्येक प्रशासनिक इलाके में तथा चौथा, कई जिला न्यायालय प्रत्येक प्रशासनिक इलाके में। इन सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त कई विशेष न्यायालयों का भी गठन किया गया था, जैसे सैनिक तथा नौसैनिक न्यायालय, वाणिज्य दूत संबंधी न्यायालय आदि। सम्राट की सहायता के लिए तीन अन्य संस्थाएं भी थीं, जिन पर न तो डायट और न ही मंत्रिमंडल का अधिकार था। गैनरो एक संविधानेतर एवं विधानेतर संस्था थी तथा इसका संवैधानिक तथा कानूनी रूप से कोई स्थान नहीं था, परंतु धीरे धीरे यह प्रथा आरंभ हुई। इसके तहत जिन लोगों ने 1868 के पुनः स्थापन तथा संविधान निर्माण के आरंभिक काल में अहम भूमिका निभाई थी, उनकी सहायता सम्राट हर महत्वपूर्ण निर्णय में लिया करता था, चाहे वे घरेलू मामले हो या विदेश संबंधी। दूसरी संस्था सलाहकार परिषद प्रिवी काउंसिल थी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष व 24 पार्षद थे और इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा यह तृतीय विधानपालिका के रूप में कार्य करती थी। इसका प्रथम मुख्य कार्य शाही घरेलू मामले जैसे उत्तराधिकार इत्यादि विषय पर देख रेख करना था। इसका दूसरा मुख्य कार्य संविधान के रक्षक के रूप में था। इसके फलस्वरूप जब संसद का सत्र नहीं हो रहा होता था, तब यह सरकार को सलाह देती थी तथा संधियों पर अपनी सहमति व्यक्त करती थी। तीसरी संस्था शाही परिवार मंत्रालय था, जिसका प्रमुख एक मंत्री होता था। उसका मुख्य कार्य सम्राट तथा उसके परिवार संबंधी मामलों की देखरेख करना था। अतः जापानी परंपरा एवं पाश्चात्य संवैधानिक संस्थाओं के अतः जापानी परंपरा एवं पाश्चात्य संवैधानिक संस्थाओं के मिश्रण से निर्मित मेजी संविधान में प्रशासन सम्राट में केंद्रित था। इसे कुछ लोगों ने धर्मतंत्रीय पितृतंत्रात्मक संविधान, थियोक्रेटिक पैट्रियार्कल कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है। इस व्यवस्था को जो 1947 तक चली, निम्नलिखित रूप से भी दिखाया जा सकता है। सम्राट के चार भाग, एक विधानपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा सलाहकार संस्थाएं, चौथा सेना तथा नौसेना अधिकारी। विधानपालिका में डायट, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, सलाहकार संस्थाएं में गैनरो, सलाहकार परिषद, शाही परिवार के मामलों का मंत्रालय, चौथा आंतरिक मंत्री। सेना तथा नौसेना अधिकारी के अंतर्गत सेना एवं नौसेना थे। डायट के अंतर्गत प्रतिनिधि सदन, कुलीन संसद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अंदर गृह मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा सेना तथा नौसेना गंत्री। प्रतिनिधि सदन के अंतर्गत मतदाता थे। गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासक पद संबंधी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तथा प्रशासक पद संबंधी तथा न्यायपालिका सदन थी। न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय व्यवस्था। मेजी संविधान जिसमें एक सीमित मेजी संविधान जिसमें एक सीमित संवैधानिक राजतंत्र की संरचना की गई न तो एक रूढ़िवादी और न ही उदारवादी संविधान था। इसे निश्चित रूप से सत्तावाद और लोकतंत्र का मिश्रण कहा जाता है। अतः इस संविधान का भविष्य आने वाली ऐतिहासिक प्रगति पर निर्भर करता था। उदाहरण के तौर पर हालांकि सम्राट को असीमित अधिकार दे दिए गए थे परंतु उसके किसी भी आदेश पर राज्य के मंत्री का प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य था, अर्थात सरकार का संचालन सम्राट मंत्रियों के सहयोग से करता था। सम्राट के विशेषाधिकार का अर्थ मंत्रिमंडल का वर्चस्व बनकर रह गया। मंत्रिमंडल के पास असीमित अधिकार इसलिए थे क्योंकि उसकी श्रेष्ठता को संसद में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यदि बजट को संसद की स्वीकृति नहीं मिलती थी फिर भी संविधान में ऐसा उपाय था जिससे पिछले वर्ष के बजट को ही अपनाया जा सके। अतः हालांकि सैद्धांतिक रूप से सत्ता सम्राट में निहित थी, वास्तविक रूप में सरकार का संचालन मंत्रिमंडल के सहयोग से होता था तथा मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी भी विषय पर सम्राट की स्वीकृति हो जाती थी। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल के किसी भी सही या गलत निर्णय को वैधानिक रूप से सम्राट की विशेषाधिकार के रूप में देखा जा सकता था। अतः सत्तारूढ़ सरकार अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही कार्य करती थी। 1931 की मंचूरिया की घटना के बाद सरकार का स्वरूप खासकर संदेहास्पद होकर रह गया।